ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى وقل رب زدني علما فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الملائكة لتضعوا أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أو كما قال عليه الصلاة والسلام عزيز طلبة سب سے پہلے تو آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ حضرات نے مزاج بنا لیا ہے نماز کب سے ہو چکی تھی اور ایسا بھی نہیں کہ جتنی دیر سے آئے وہاں عوامین پڑھ رہے تھے کب سے فارغ ہو کر باہر کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے چاہیے تھا کہ فوراً یہاں پہنچ جاتا جبکہ آپ کو پہلے سے بتلا دیا گیا تھا یہاں آنے کے بعد بھی آپس میں جو کانا پھوسی اور اس کی وجہ سے ایک شور سا پیدا ہوتا ہے یہ ہمارے اہل علم کی مجلس کے شان نشان نہیں اور ایسی مجالس میں جو بڑے طلبا ہیں ان کو آگے رہنا چاہیے دور حدیث مشکات تخصصات کے جایا کے یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق ہدایت فرمائی ہے ترمذی شریف کی روایت ہے لِیَلِیَنِ مِنْکُمْ اُولُو الْآدَابِ وَالنُّحَى نماز کی صفوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی کہ جو سمجھدار بڑے وہ قریب رہے نمازوں کے اندر یہ دینی مجالس جو ہیں ان کی سمبندی بھی نماز کی سمبندی کی طریقے پر ہوا کرتی ہے یہاں پر بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو समझदारता दबा है वो आगे, लेकिन आम तौर पर मिजाज ये है कि वो तो देर से आते हैं, पीछे जाकर कोने में बैठ जाएंगे और फिर आगे छोटे तलबा बैठते हैं। ये उनके शौक और रगबत की बात है। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर वही फरमाई है कि जो लोग पीछे रहते हैं अल्लाह ताला उनको पीछे करते हैं। दीन की तलब के मामले में आदमी को आगे रहना चाहिए और खास करके जो बड़े तलबा हैं उनको इसका खास एहतमाम करना चाहिए कि ऐसी जो जितनी भी मजालिस हैं ऐसे जलसे हों और ऐसे जब प्रोग्राम हों तो बड़े तलबा आगे हों छोटे पीछे हों। हमारे यहाँ मामला उसका उल्टा हो जाता है। ये तरीका सही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है। बात दरअसल क्या है, शौक और रगबत जो होनी चाहिए वो है जबरदस्ती मार करके धक्के दे करके ध्यान आया जाता है। उसी का नतीजा होता है कि आप कोने ही में बैठने को तरजीह देते हैं आगे बैठने के मुकाबले में। जब आप अपने लिए यही सूरत इख्तियार करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसी के मुताबिक मामला किया जाएगा। वहां तो जिसके अंदर तलब होती है उसको दिया जाता है। दोबारा आप हजरात आइंदा इसका ख्याल रखेंगे या नहीं?
इंशाअल्लाह
हाँ, तमाम जो बड़े हैं उनसे खास तौर पर ताकीद करता हूँ। और फिर ये जो आने में आपने ताकीद की, हालांकि आप अपनी सुन्नतों से नवाफिल से तो कब से फारिग हो गए, बाहर आकर खड़े थे बातें कर रहे थे। ये बातें करना ये भी अपने औकात को जाहिर करना है। आपको अभी पढ़ने नहीं गए थे, आपको तस्बीह पढ़ते तिलावत करते जो हाफिज है वो कुरान की तिलावत करते या तस्बीह पढ़ते या और कुछ दुआ वगैरह में दिली दिल में मशगूल होते कि जो आपस में बातें करने का एक मिजाज बना है। ये भी अपनी जिंदगी के कीमती औकात को जाया करना है। यही हमारा मिजाज आगे जाकर हमारी बर्बादी का दर्जा बनता है। तलबे इल्मी के जमाने में आपकी तबीयत और आपका मिजाज ऐसा हो जाना चाहिए कि एक एक मिनट को वसूल करने का एहतमाम करें। कोई लम्हा कोई मिनट कोई वक्त आपका जाहिर हो उसको हर आपके हाथ में किताब होनी चाहिए। तो भाई आप ऐसा मौका मिला कि उस किताब को देखने में मशगूल होते हैं। दोबारा मेरे कहने का हासिल है कि ये जो आप हजरा इस तरह अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। अच्छी अलामत उसको तो होती कि आप हर वक्त अपने एक मिनट को वसूल करने की तरफ मुतवज्जे होते और एक लम्हे को भी जाय करना आप गवारा न करते। बारह ये तो अभी के तौर पर ये आपकी अभी जो गफलत थी की इसकी मुनासबत से मैंने अर्ज किया है। वैसे अगले जो पीर के रोज मैंने अर्ज किया था आपको, हम आप तलबा हैं, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जो है सबसे बड़ी बीमारी मैं उसकी तरफ आपको मुतवज्जा करना चाहता हूँ। सारी खराबियों की जड़ हुई अगर इसका इलाज हो जाए तो फिर देखो अल्लाह ताला कैसे नवाजते हैं। वो मैंने उस रोज पीर के रोज की जो मजलिस थी उसमें इस चीज की तरफ मुतवज्जा किया था। इल्म की तलब के फजाइल तो बहुत है, आप हजरात अंजुमन के जलसों में उसके ऊपर लंबी लंबी तकरीरें करते हैं बयान करते हैं और कुरान और हदीस के नुसूस को पेश भी करते हैं। लेकिन मैंने कहा उस मजलिस में कहा था सबसे बुनियादी चीज यह है कि हमारे बुजुर्ग हमसे क्या चाहते हैं। मैंने वाकया जिक्र किया था अलशेख मौलान जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का, मैंने बताया था कि हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब उस्मानी दामन बरकात उन्होंने एक मौके पर कई साल पहले की बात है वहाँ हैदराबाद के अंदर दारुल सबील सलाम में एक फिर सेमिनार हुआ था 30-35 साल हो रहे हैं तकरीबन 30 से ज्यादा ही। उस मौके पर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब भी तशरीफ लाए हुए थे और वहाँ जो सेमिनार के औकात के अलावा दूसरे वक्त में असर व मगरिब के दरमियान वहाँ के तलबा ने आने वाले मेहमानों के एजाज में एक मजलिस रखी। उस मौके पर हजरत मुफ्ती साहब ने जो खिताब किया था, जो वाकया जिक्र किया था, वो मैं बयान कर चुका हूँ आपके सामने, मैं फिर बयान करूंगा ताकि ताजा हो जाए और उसी की बुनियाद पर मुझे आपको मुतवज्जे करना है। फरमाते हैं शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जब बराए पाकिस्तान इजाज तशरीफ ले जा रहे थे और वो खुशकी के रास्ते से गए थे, पहले लाहौर और फिर वहां की कराची के जमाने के आम में हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसे दारुल कोरंगी में हजरत तशरीफ ले गए थे। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि हम असातिज़ा और तलबा ने हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह से दरख्वास्त की कि आप हमें कुछ नसीहत फरमाएं। हजरत ने यह भी फरमाया कि सब जानते हैं कि हजरत शेख कोई बयान नहीं करते। हजरत ने मुख्तसर नसीहत फरमाई, प्यारो अपनी कदर पहचान और तीसरी माने में तालिबे वकील में बनने की कोशिश करो। एक ही नसीहत, ये नसीहत ऐसी थी उसमें सब कुछ आ गया। अपनी कदर पहचानो। देखो हमारे मुतालिक तलबे इल्म के मुतालिक जो फजाइल है वो तो हम खूब बयान कर रहे, लेकिन इन फजाइल को जो सामने रखकर क्या हमने अपने मकाम को पहचाना है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, इन्नल मलाइका लतदउ अजनहतहा अजनहतहा लितालिबिल इल्म लिज़म बिमा यसनउ लिज़म बिमा यसनउ। तालिब इल्म जो काम कर रहा है यानी इल्म की तलब, उस पर खुश होगा कि फरिश्ते उनके लिए अपने पर बिछाते। फरिश्ते नूरानी मखलूक है, वो उनसे कोई गुनाह साबित नहीं होता। उनसे गुनाह का सुदूर हो ही नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको भी इस बात का पाबंद किया है कि तालिबे इल्म के लिए। लेकिन तालिबे इल्म कौन? तो वाकई करता है। हम लोगों ने तालिबे इल्मों का मोहना तो फेर रखा है और अपने आप को तालिबे इल्म कहते तो है, लेकिन वाकई अदन क्या हमारे अंदर तालिबे इल्म के अंदर तलब जो होनी चाहिए वो है? सवाल ये, इसकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। तालिबे इल्म किसको कहते हैं, तलब किसको कहते हैं? मैंने उस वक्त बयान किया था कि तलब हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि इंसान की कामयाबी का राज इसी के अंदर है कि उसके अंदर दीन की तलब पैदा हो जाए, चाहे दीन के सीखने की चाहे दीन पर अमल करने की, ये दोनों चीजें जरूरी है। दीन के इल्म को हासिल करने की तलब और दीन के ऊपर अमल करने की तलब पैदा हो जाए, कामयाब हो गया। तलब असल चीज है, जब किसी के अंदर तलब होती है अल्लाह ताला उसको जरूर नवाजते हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं आपका मुतर जो इस नगी आवर पे दस ताब दुखद आप तक पाना हो बस, पानी तलाश मत करो, अपने अंदर प्यास पैदा करो ताकि ऊपर और नीचे से पानी जो है उबल ले सके। जब आदमी प्यास पैदा करता है अल्लाह तआला उसके लिए पानी का इंतजाम करता है। तलब का मतलब क्या, मैंने उसको बतलाया था कि तलब जैसे किसी चीज के दिल के अंदर ऐसा उसको हासिल करने का जज्बा पैदा हुआ हो कि जब तक के वो चीज हासिल न हो जाए वहां तक आदमी चैन से न बैठे, उसको नींद ना सुकून न हो। जैसे कि भूखा आदमी होता है, भूखा जिसको भूख लगी है। भूख का क्या मतलब? भूख का मतलब है खाने की तलब। भूख लगने का मतलब ये खाने की तलब पैदा हो। अब जब तक उसको खाना नहीं मिलेगा, न नींद आएगी, न चैन और सुकून हासिल होगा कुछ, बस हर वक्त वो इसी की तरह हमें खाना दे, इसी चीज में उसका दिल नहीं लगता जब तक ये तलब उसकी पूरी न हो। ये जैसे प्यास, प्यास किसको कहते हैं? पानी की तलब का नाम प्यास। अब उस आदमी को जब तक के पानी न मिले वहां तक चैन और सुकून बेचैन रहता है। जब तक पानी पिएगा नहीं वहां तक किसी कल चैन नहीं पड़ेगा। पहले पानी बाकी किसी चीजों के अंदर नहीं लगेगा। तलब का मतलब ये हमारे शहर में जो नसीहत फरमाई थी वो दरअसल हमारे अकाबिर में है, बड़े जामे हमारे उस नसीहत में सब कुछ आ गया। अगर किसी के अंदर इल्म की तलब पैदा हो तो बस सब कुछ हासिल। इसीलिए उन्होंने हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मकोला भी नकल किया था कि तुम कुछ न बनो, वाकई माने में ताजगी में बन जाओ तो तुमको दुनिया और आखिरत की नेमतें हासिल होंगी। इल्म क्या होता है? बस हर वक्त वो इल्म के उसूल के अंदर लगा रहता है, उसका कोई वक्त इल्म से खाली नहीं। इश्कात में आपने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत पढ़ी होगी, मनुमान लायश बहाने मनुमान फिल लायश बहो मिन व मनुमान फिल दुनिया लायश बहो मिन। ये दो बुद्धे ऐसे हैं कि वो उनका पेट नहीं भरता इल्म का भूखा। बस हर वक्त इल्म की तरफ में लगा हुआ रहता है, उसकी ये भूख मिटने का नाम नहीं है। हर वक्त उसमें लगा हुआ मौत तक, मौत की आखिरी घड़ी तक ये तलब उनमें मौजूद होती है। हमारे काबिर के वाकयात पढ़ेंगे तो मौत की हालत में भी वो इनमें ही के अंदर मशहूर है। मैंने बताया था इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा, आपने हिदायत के हाशिए के अंदर की हजरत मौलाना अब्दुल हय साहब लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको किताब उधार में मैंने कहा पैदल रास्ता। फिर उसके बाद खुद ही फरमाया हर वो रमी जिसके बाद दूसरी रमी है वो तो पैदल की जाएगी और जिसके बाद दूसरी रमी नहीं है उसको सवार होकर किया जाएगा। इब्राहिम ने जरा कहते हुए उसके बाद में उठकर घर जाने के लिए लौटा, सदर दरवाजे पर पहुंचा था और रोने वालियों की आवाज आई। मालूम हुआ कि हजरत इमाम का इंतकाल हो गया। खुद फरमाते हैं मुझे उनकी भीड़ से इल्म पर तात्पर्य कि मौत की घड़ी है और उनका दिमाग मसले को सुलझाने में लगा। यह है इल्म की तलब। इमाम मोहम्मद इब्ने हसन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह के मुतबिक दाहिर रिवायत जैद दाहिर रिवायत सारी उन्हीं की किताबें जो आप पढ़ते हैं उन्हीं से ये सारे मसाइल बयान किए जाते हैं। उनके इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा कि आपकी रूह किस तरह कब करो, तो जवाब में फरमाते मैं तो मुखातब के एक मसले को सोच रहा था, मेरी रूह कब कब जाओगी मुझे पता भी नहीं चला। वह इसी मौत की हालत में इसमें मशहूर है। हमारा हाल भी ऐसा ही होना चाहिए कि हर वक्त इल्म के हुजूर में ऐसे मशहूर रहे कोई लम्हा खाली न हो। मैंने हाफिज इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा भी सुनाया था कि हाफिज इब्न असाकिर ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, तारीख दिमश्क उन्होंने लिखी है और अभी तक नहीं छपी है, इतना 70 जिल्दों के अंदर वो छप करके आए और भी उनकी बहुत सारी तारीफात हैं। उनके मुताबिक है कि वो शाम से इल्म हासिल करने के लिए खुरासान गए और नेशापुर, नेशापुर में इमाम अबू अब्दुल्ला फरावी बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उनकी खिदमत में हाजिर हुई। खुद इमाम फरावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तीन दिन के अंदर इस तालिब इल्म ने मुझे थका दिया, रात दिन सुबह शाम पर वो मेरे सर पर सवार है कि मुझे ये बताओ इसके अलावा मुझे हदीस सुनाओ, हदीस सुनाओ, हदीस सुनाओ। यहाँ तक के तीन दिन के अंदर उनसे आजिज होकर इमाम फरावी फरमाते हैं कि मैंने कसम खा दी अल्लाह की कसम, अब ये आदमी मेरे घर पर आएगा तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अब एक हकीकी तालिब इल्म का मकाम बारगाह रिसालत में कितना ऊंचा है आप अंदाजा लगाएं। इमाम फरावी फरमाते हैं कि दूसरे रोज सुबह किसी ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया, मैंने खोला, एक आदमी कहता है अना रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दासी और पैगाम पहुंचाने वाला बन करके आया। फिर उसने कहा मैंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने मुझे फरमाया कि तुम फरावी के पास जाओ और उनसे कहो कदेव बलदकुम रजुलुन शामीयुन अस्मरुल्लाह यतलुबु हदीसी फला तमल्ला, तुम्हारे शहर के अंदर एक शाम का रहने वाला गंदुम को आदमी मेरी हदीस तलब करने के लिए आया हुआ है, तुम उनसे उत्तामट है। इस किस्से को बयान सियारो आलामी नोबलामी यह किस्सा है। इस किस्से को बयान करने वाला कहता है उसके बाद इमाम फरावी का यह हाल था कि वल्लाहे ला यकूम फरावी हत्ता यकूम हाफिज, हाफिज इब्ने असाकिर जब तक के मजलिस से न उठते थे वहां तक इमाम फरावी नहीं उठते। ये तलब का तलब कैसी थी, ऐसी तलब पैदा करें तब हम इस फकीर की माने में तारीफ में कहते हैं। आज हमारा तो मसला है ना कोई तलब नहीं, घरों से माँ बाप ने गया करके लेकर के निकाला है, या मैं तो हम तो बहुत मुद्दत से मेरे पास जब इजामत थी और बच्चे छुट्टी लेने के लिए आया करते थे तो क्या होता था। एक किस्सा सुना मुझे तालिब इल्म क्या बाप आया छुट्टी लेने के लिए तो मैं जरा उसका ये किया टॉर्चर किया, उसको पूछा ये क्या मामला है, उसने कहा कि मां बीमार है, मैंने जरा इधर उधर के जो सवाल किए ना वो भी टूट गया। उसने कहा बात दरअसल ये कि मेरे बच्चे ने मुझे कहा कि अब्बा किसी भी तरह छुट्टी लेकर मुझे घर ले जाओ, तो अब मैं उसकी मां बीमार नहीं है मगर उसके इस स्नान की वजह से मैंने ये झूठी बात आपके सामने कही। तो मैं कहा करता हूँ ये मुंतजमीन से भी के भाई ना इनके माँ बाप को पढ़ाना है ना इनको पढ़ना है, आपकी तरह लोग पढ़ाओ नतीजा को गरज है, मुंतजमीन को गरज है तो पढ़ाओ, ऐसा मामला बन गया। यह हाल हो गया, आज हमारे मदारिस बंद हो गए, काम के आदमी नहीं करते, उसकी बड़ी वजह यही है तलब जो थी वो बाकी नहीं रही, दूसरी चीजों में मशहूर हो गए। जो हकीकी तालीम में हो भला उसको कहां पढ़ सकते, उसको तो अपना खत पढ़ने की भी भूल सकते। हजरत हकीमुल उम्मत नवरल्लाह मरकदहु ने अपने मुताबिक फरमाया कि मैं जब देवबर पढ़ने के लिए गया शव्वाल से लेकर शाबान तक, हालांकि देवबंद से थाना भवन को ज्यादा दूर नहीं है, कहते शव्वाल से लेकर शाबान तक कभी घर नहीं जा गया और इस दरमियान में कोई खत अगर आता था तो मैंने एक मटका रखा था छोटा उसके अंदर उसको डाल देता। साल पूरा होने के बाद जब इम्तिहान हो जाता था, इम्तिहान के होने के बाद मैं उस मटके को उलट देता था और उन खतूत को पढ़ता था, इसलिए नहीं पढ़ता था दरमियान में कि इसमें किसी किसी की मौत की या कोई शादी की या कोई खबर होगी उसकी वजह से दिमाग में मशगूल हो जाएगा। तलब इल्मी के लिए जो यकसुई मतलूब है आदमी की तालीम की तवज्जो खालिस इल्म हासिल करने ही की तरफ हो, किसी और चीज की तरफ तर्रा बराबर ध्यान हो। ये मिजाज अगर तालिब इल्म का हो तो ये मानता है क्या ये खुद यकसुई के राह में वह रुकावट बनते हैं इसलिए मैं नहीं पढ़ता। एक तालिब इल्म का वाकया बताया कि वो पढ़ता था मदारिस के अंदर तो खाना जो आता था तो खाना लाने वाले साथी को यूं कह दिया था मुझे खाली रोटी दे वो रोटी आदमी लेके किताब का मुतारा करता रहता था और एक एक लुकमा टोल खाता रहता था। तालम के साथ क्या है वो किताब के साथ जो मशगूली है वो खत्म हो जाती है उसको दोबारा नहीं तालम कुर्बान करती है। खाली रोटी पर इंतजाम किया किताब के साथ जो मशगूलियत है उसमें कोई रुकावट पेश नहीं आए। तलब इसका नाम है हमें जरूरत आज कि सारे किसी जो शिकायतें हैं वो सब जड़ उसकी जड़ ये है कि तलब है। तलब होती हमें कुछ न कहना पड़ता बल्कि साथीदार को फिक्र होती आपकी मुंतजमीन जो है आपको रोकते भाई इतनी मेहनत मत करो आज आधी रात तक और पूरी रात तक जो है बेटा मत रहो आराम करो। ये ऐसा कि हजरत अपने लाइफ में अमर न्यास रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की थी इन्ना ले जसद काले का हक कर इन्ना ले आईने काले का हक कर के तुम्हारी आंखों का भी हक। अब हम तो रात भर पड़े रहेंगे और फिर कोई कुछ कहेगा नहीं कहेगा इन्ना ले जसद काले का। मैं कह इस मुझे ये जुमला अच्छा नहीं लगता ये तो उस आदमी को कहा जाएगा जो तो अपने आप को बना कर रखता है उसके लिए कहा जाता है उसको समझाने के लिए। और वो हम अपने उंगलियां क्यों बने हम अपने लिए ये जुमला इस्तेमाल नहीं करेंगे वो तो हमारे बड़े हमको साक्षी करेंगे भाई तुम्हारे किस्म का है तुम्हारी आंखों का है इतनी मेहनत मत करो। दोबारा यह लग रहा था कि असल तलब है तलब अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए वो लोग शिकायत ये सारी जो झगड़े हैं अब ये मोबाइल आ गए अब ये सारे अरे ताल्लुकात ये सब क्यों इसी ने हमको तलब होती है इसकी नौबत ही ना अगर शेख रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद बुजुर्गवार का मकूला नकल किया है कि तालिब इल्म कितना ही होशियार अगर उसके अंदर ताल्लुकात की दोस्ती की आदत पड़ी हुई है वो कुछ नहीं कर पाएगा कुछ हासिल नहीं कर सकेगा और कितना ही गरीब क्यों ना हो लेकिन अगर उसमें ये बीमारी नहीं है ताल्लुकात की दोस्ती की वो कुछ ना कुछ हासिल करके जाएगा वो अपने काम में मशगूल रहेगा। आपको तो अपने काम में मशगूल रहना चाहिए। ये मदरसे के जो कवानीन है वो तो आपके ऊपर आप तंगी पैदा करने के लिए बनाए गए आप अगर इस तरह इल्म के तलबगार होते जो मैंने अभी बताया कोई कानून मदरसा वाला होता न बनाता बल्कि आपको उनके नजर कुछ आराम करो मेहनत को मेहनत कर जैसा मैंने अभी कहा ये कवानी तो इसलिए कि हमने जो हमें करना चाहिए था उससे ध्यान हटाकर दूसरी चीजों में अपने आप को मशगूल कर दिया। हर आदमी हर कार्य इस बात को तस्लीम करता है कि भाई नफ्स और शैतान के बहकाव में आकर हम ऐसा कर रहे हैं। अब ये नफ्स और कवानी तो बनाए जाते हैं वो आपके लिए नहीं है वो तो वो नफ्स और शैतान आपको बचाने के लिए है। नफ्स और शैतान आपके भी दुश्मन है हमारे भी दुश्मन है हम मिलजुल करके अपने इन दोनों दुश्मनों का मुकाबला करें। अब ये जो कानून बनाकर आपको पाबंद किया जाता है कि ये करो ये करो और उसके नतीजे में आप यूँ समझते हैं कि ये कानून बनाने वाले मुंतजमीन जो है ये हमारे दुश्मन है। अरे दुश्मन तो नफ्स और शैतान है ये तो आपके दोस्त नहीं आपको इन नफ्स और शैतान के जो है ना इसके बहकावे से निकाल कर उसके जो है उसकी नुकसान से निकालकर आपका भला करना चाहते हैं, अब आप उनका उनका फेवर कर रहे हैं। इसका शैतान आपको तो हमारा फेवर करना चाहिए कि हम आपके ईमान में सरफा है, आपके असातिज़ा, आपके मुतल्लिमीन, आपके निगरान, वो आपको इल्म से आस्था करके यहाँ से भेजना चाहते हैं। और इस्लाम में रुकावट बनने वाले जो तो दुश्मन है, उन दुश्मनों से बचाने के लिए सारी तदबीरें की जा रही है। ऐसे मौके पर आपका फरीजा ये था कि आप हमारा साथ देते, न के उनका। लेकिन मामला फर्क, आप हमारा साथ देने के बजाय उनका साथ दे रहे हैं। नफ्स और शैतान एक तरफ इस बात को भी तस्लीम करते हैं कि भाई हम नफ्स और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं और हमारा यह नुकसान हो जाता है। दूसरी तरफ जब उससे बचाने के लिए तदबीरें की जाती है, तो उन तदबीरों को बेकार करने के लिए और नफ्स और शैतान को मजबूत करने के लिए आप मैदान में आते हैं। ये दोगली पॉलिसी कैसी, ये तरीका तो समझ में नहीं आता। अगर वाकई आप समझते हैं कि हम नफ्स और शैतान के धोखे और बहकावे की वजह से इन चीजों में फंसते हैं, तो हम जो तदबीरें कर रहे हैं आपको नफ्स और शैतान से बचाने के लिए, आपको उन तदाबीर में हमारा साथ देना चाहिए, न कि उनका, जबकि आप उनका साथ देते। आपकी आप बोलते कुछ है, करते कुछ है, ये तरीका सही नहीं है। पर मैं कल भी मैंने दौरे वालों से अर्ज किया था कि भाई देखो, जो आदमी अपने दोस्त और दुश्मन में तमीज न करे, अपने खैरखा और बता कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरी भलाई चाहता है, कौन मेरी तरक्की चाहता है और कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरी बुराई चाहता है, कौन मुझे नीचे गिराना चाहता है, इन ऐसे दो में फर्क अगर मैं ना करूं तो मैं कभी दुनिया में कामयाब हो सकता नहीं। आप लोगों को भी इसका एहतमाम, ये तो असातिज़ाए किराम है, ये आपके दुश्मन नहीं है। जो आपके गलत जो है आदतें पड़ चुकी है, उन गलत आदतों में छुपके छुपके आपका साथ देते हैं, वो आपके दुश्मन है, वो दोस्त नहीं है। आप उनको दोस्त समझ रहे हैं, और आपके असातिज़ा को, आपके मोहसिनीन को आप अपना दुश्मन समझते हैं। आपकी सोच ही बदल, इसी सोच ने आपको बर्बाद किया। जरूरत है अपनी सोच को दुरुस्त करो। यहाँ जो आपके लिए इतनी सारी मशक्कतें उठाते हैं, भला आपसे हम दुश्मन करें, आपसे तो हमें बड़ी उम्मीद है। वापस एक बाप को अपनी औलाद से जो उम्मीद है वाबस्ता होती है, एक उस्ताद को अपने शागिर्द से उससे ज्यादा उम्मीद है वाबस्ता होती है। हम आपके दुश्मन नहीं है, हम तो ये चाहते हैं आप वो पढ़े, अच्छे आमाल के आदि बने, यहाँ से जावे, दीन की मकबूल खिदमत अंजाम दे। आप अंजाम दें कि आपका नाम रोशन हो, अल्लाह आपसे राजी हो और मखलूक को आपसे ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, हमारा भी उसमें हिस्सा लग जाए। कल को क़यामत में अल्लाह ताला आपको नवाज देंगे, तो वहां इसको बढ़ाने में इन लोगों ने भी हिस्सा लिया था, चलो इनको भी तो जन्नत दिया। तो हम तो आपसे उम्मीदें रखते हैं, आप शैतान और नफ्स का साथ देकर आपसे तो तवक्कुआत और उम्मीद रखते हैं, आप हमारी उम्मीदों को जो है ना बर्बाद कर रहे, पानी फेर रहे हैं उसके ऊपर। कुरान में हज में बारी तला का इशान है, कुमार सल्ला कबल कबीन रसूलिन वला नबी इदा इल्ला इदा तमन्ना अलक शैतान की उम्मीद। इस आयत की तफसीर में बहुत कुछ हजरात मुफस्सिरीन ने कलाम किया है, लेकिन हजरत अल्लामा बादशाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फैजुल बारी के अंदर इस मौके पर जो है वो साहिब इब्लीस का कौल बदल दिया कि भाई हजरात अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत पर जो मेहनतें करते, उन मेहनतों के दौरान उनसे जो उम्मीदें कायम करते हैं, इसे उस्ताद आपको पढ़ाता है, उस्ताद पढ़ाने के दौरान आपसे उम्मीदें कायम करता है, ये क्यों पढ़ेगा, ये इतना बड़ा बनेगा, ये इतना होशियारी से निकल लिखा होगा। तमाम शागिदों में से हर एक के मुताबिक उस्ताद कुछ न कुछ उम्मीदें और तौहबात खाई करते मेहनत करने के द्वारा। तो इसी तरह हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाल होता है, जो अल्लाह ईमान की दावत उम्मत को देकर उन पर मेहनत करते हैं। हमारे सालिहा में फर्क के लिए लाने के वास्ते एक तरफ उनकी मेहनत होती है, दूसरी तरफ शैतान आकर के उनकी इस मेहनत को जो है ना तोड़ने के लिए अपनी मेहनत करता है। अब इन नबियों ने अपनी उम्मत के अफराद से जो उम्मीदें कायम की थी कि मैं अपनी जो है ना पूरी 100% उम्मत को या 60% उम्मत को अल्लाह का मुखी और हमारा बना दू मेहनत करके, शैतान आकर के और इनको राय रास्ते पर आने के बजाय दूसरे रास्ते पर डाल देता है। उसी को शैतान गोया उन नबियों की तमन्नाओं में और उम्मीदों में डरता। हाल हमारा भी यही है, हम असाथिदा आप मतलब मेहनत करते हैं ना, हम तो आपको देख करके बड़ी उम्मीदें कायम करते हैं कि आप ऐसे बनेंगे ऐसे बनेंगे, आपके जरिए से जो है ना हमारा काम बन जाएगा। तो फिर जब आपके मुताबिक ऐसी बातें सुनते हैं कि भाई अंदर से तो जो है मामला ये निकला, तो हमारी उम्मीदों पर पानी गिर जाता और हमारी जो है ना यूं समझिए कि एक मायूसी सी छा जाती है। आपके वालिदैन जैसे हम आपसे उम्मीदें तमाम उम्मीदें रखते हैं, आपके वालिदैन ने भी आपसे उम्मीदें कायम की, उन्होंने यहाँ छोड़ा आपको तो बड़ी उम्मीदें और तमन्नाओं के साथ वो यहाँ छोड़ करके गए, यहाँ देखा बना उस्ताद, आपके आपका बाप जो है ना कहेगा नहीं, दिल दिल में यूं सोचेगा मेरा बेटा फलाने जैसा बन जाएगा, मेरा बेटा फलाने उस्ताद को यहाँ पढ़ा रहे ऐसा बन कर के आवे, मेरा अपने भाई अहमदुल्ला जैसा बन कर के आवे, फलाने मुफ्ती जैसा बन कर के आवे, फलाने मोहद्दिस जैसा, फलाने तौसीफ पढ़ाते उनके जैसा बन कर के आवे, ये बाप को ये उम्मीद रखता है। वो उसके बाद जब बेटा घर जाता है और उसका हाल बाप देखता है, आप अंदाजा लगाओ वो मायूसी तमन्ना सुंदर सूर्य आसमान देखे तो मंजिल बमंजिल अपनी मेहनत लाएगा। तो बाप ऐसा मायूसी का शिकार होता हो, तो मैंने अपना सब कुछ कुर्बान करके इसको पढ़ाया था, इससे उम्मीदें कायम की थी कि मेरी आखिरत को दुरुस्त करेगा, मुझे अल्लाह के यहाँ को दिलवाएगा, ये तो नमाज भी नहीं पढ़ रहा। माँ बाप आकर याद करते हैं मौलवी साहब आपने ये क्या पढ़ाया, ये तो मौलवी बनकर के आया है मुझे की नमाज भी नहीं पढ़ रहा। बाप रोता है, उसने अपना पेट काट करके आपके लिए पैसे भेजे थे, आपकी हजरतें पूरी की थी, वो इतने उमदा चप्पल नहीं पहनता था, बहुत से देहात में रहने वाले बाप तो ऐसे हैं कि गुल्ले में करते हैं और अपने बेटे को अच्छे से अच्छे चप्पल जूते दिलवाते हैं, अब खुद मामूली कपड़े पहनते हैं, अपने औलाद को आधा से आधा का लिबास दिलवाते हैं, क्यों देखो ये उम्मीद रखते हैं ये मेरा बेटा मेरे जन्नत में लेकर ये बढ़ेगा दीन की खिदमत करेगा। आपसे क्यों तमन्ना है, उम्मीदें बांध करके बैठे हैं माँ बाप, वो भी बैठे हैं हम भी बैठे हैं, हम भी आपसे उम्मीदें खाई करके बैठे और आपकी जब ऐसी हालतें सुनते हैं शिकायतें आती हैं हालात सामने आते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है, अल्लाह क्या हो रहा है, हमारी मेहनतों पर पानी गिर रहा है, ये शक्लें जो है दुरुस्त नहीं है। जरूरत है आप अपने आप को इन्हीं कामों में लगाए रखें, तलबे इन में दूसरी चीजों की तरह आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। देखो तलब इल्म के आदाब आपको सुनाए जाते हैं, तो असर के बाद हजरत खारी सिद्दीक साहब नवर अल्लाह का रिसाला आदाब उल मुतालिमीन सुनाया गया, उसके बाद उसे बाकायदा मशवरा करके वो सब तय करते हैं और सुनाया, उसको भी जल्द से नहीं सुनाना। तो ये क्यों सुनवाते हैं? ताकि आपको मालूम हो कि हमें इल्म किस तरह हासिल करना है, अपने आप को किस तरह आगे बढ़ाना है। इल्म की राह में जो रुकावटें मवान है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, उसके जो आदाब और शराइत थे उनके साथ साथ रफे मवान शर्त, जब तक कि उन मवाने को आप दूर नहीं करेंगे वहां तक कोई चीज हासिल नहीं होगी। इल्म की राह में तो मवाने सबसे पहला माने तो है वो मासी गुना। ये यूं समझिए कि तालिब इल्म के लिए इल्म से महरूमी का आला से आला दर्जा। आज उससे बचने कदीम जमाने में तलबा से किसी गुनाह का सुदूर हो उसका सवाल ही नहीं। तलबे में इसे मशगूल रहते थे कि वहां कोई किसी गुनाह का तस्वीर ही नहीं, यहां तक कि मौका अगर मिलता था तो भी वो अपने आप को बचाते। आपने किसी आदाब और मुतालिबी में सुना होगा किस्सा, एक मरतबा एक शहर के अंदर जो है एक तालिब इल्म मस्जिद के अंदर रहता था। वहां ऐसा हुआ कि रात के वक्त शुरू में मगरिब के बाद एक लड़की अपने किसी रिश्तेदार की मुलाकात के लिए निकली थी और अचानक फसाद हो गया, कौम फसाद हो गया। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उसी मस्जिद में जिसमें वो तालिब इल्म रहता था वो पना हासिल करने के लिए घुस गई। देखा कि तालिब इल्म अपने कमरे के अंदर बैठा चिराग की रोशनी में किताब पढ़ता है। जवाब उसको देखकर तालिब इल्म घबरा गया कि आप यहाँ कैसे चले जाओ। तो तालिब इल्म को डर हुआ, तो तलबा के ऊपर वैसे भी आवाम का पंजा बड़ा मजबूत कसा हुआ होता है, लोग देखेंगे कि आप यहाँ आए हैं तो मुझे तो यहाँ मस्जिद से भी निकाल देंगे, मैं तो हिम्मत से मालूम रहूंगा, मेहरबानी करो हाथ जोड़ दो। उस लड़की ने कहा कि बाहर ये सूरत हाल है, मेरी इज्जत का सवाल है, क्या इस हालत में भी मुझे यहाँ बना नहीं देंगे। उसने जब ये सुना तो कहा कोने में बैठ गया। अभी अपनी किताब का मुताला कर रहा है, मुताले के दौरान थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी उंगली चिराग की जो बत्ती है लव के ऊपर बताया जाता था। इस तरह पूरी रात गुजरी, रात का आखिरी हिस्सा हुआ, मसाजी अपने अपने घर चले उठे और अमन और सुकून कायम हुआ। उस तालिब इल्म ने उस लड़की से कहा अब मेहरबानी करके आपका घर कहाँ है मैं पहुंचा देता हूँ, आप अपने घर चले जाओ। उस लड़की ने कहा मैं रात भर देखती रही कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप अपनी उंगली को चिराग की लौ के ऊपर रखते थे, पहले जब तक उसकी वजह नहीं बताओगे वहां तक मैं नहीं जाऊंगी। उसने कहा ये मेरा मामला है, क्या नहीं बताओ। उसने कहा कि तुम यहाँ की तनाई थी, शैतान और नफ्स बार बार मुझे वर्णना रहे, अच्छा मौका है तो मैं गया उस पर उंगली रख करके अपने नफ्सा को कहता था कि दुनिया की मामूली आग मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, आखिर जहन्नम की आग कैसे तो बर्दाश्त कर सकेगा, उसकी पर मदद कैसे कर सकता। ये उस जमाने की तलबा थी। दोबारा मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि गुनाह का सुदूर तो मुझसे होने का सवाल ही, आजकल तो कौन सा गुनाह है जिसको उसने छोड़ा हो। मासियत के साथ इल्म नहीं आ सकता, और इल्म जो है ना इल्म के साथ जब तक के अमल न हो, इल्म के अमल के बगैर इल्म इल्म नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह का मकूला है अल इल्म मा नफा वलैस अल इल्म मा हुफ्ज। जो याद कर लिया जाए, इबारतें याद कर ली, मसले याद कर लिए, ये इल्म नहीं है। इल्म तो वह है जिस पर आप अमल करें और अमल के नतीजे में उससे आपको क्या हो फायदा हो। आपने पढ़ लिया पांच नमाजें फर्ज है, ये इल्म नहीं, बल्कि अगर पांच नमाजें फर्ज है और आप फर्ज की तरह उसकी क्या करते हैं पाबंदी करते हैं, तब मालूम हुआ कि पांच नमाजों के फर्ज का इल्म हुआ है।
यार कुछ यार खैर वो
वो अगर पानी आ रही नहीं है तो भलाई खैर और शर जाए ना जाए इसको भलाई बुराई को जानता है आलिम तो वो है जो खैर को जानता है और उस पर फल और शर को जानता है और उसे अपने आप को बचाता है ये है आलिम उसी होगा जब हम अमल का हर बाबा असलाम का आज तक ये व्यक्ति हमारे मदरसे कायम किए और अब ये सिलसिला इस तरह जो है गफलत का हमारे मदारिस के अंदर शुरू हुआ उससे पहले आम विकास ये था कि इल्म हासिल करके उस पर अमल का इंतजाम किया जाता है ऐसा नहीं और जो पढ़ा उस पर अमल का आपने इमाम अहमद इंतजाम के हालात में पढ़ा होगा सुना होगा इमाम बुखारी की हालात जहाँ सुनाई जाती इमाम साहब फरमाते हैं इमाम अहमद कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक पढ़ा कि आपने सींगी लगवाई और सींगी लगाने वाले अबू तैयबा जो थे उनको उजर तो इमाम अहमद फरमाते हैं मैंने भी सींगी लगवाई हालांकि सींगी जो है वो तो एक किला बीमारी में जरूरत के वक्त उसको अपनाया जाता है लेकिन यहाँ अपने इल्म पर अमल करने का इतना ज्यादा इंतजाम कि कोई बीमारी नहीं फिर भी इस पर अमल का इंतजाम किया ये साथ जब अपने बड़े हुए को अमल जामा पहनाने का इंतजाम करें बचपन से पढ़ने के जमाने से अगर ये मिजाज बनाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी जो है ना ये हमारे ये कारण होता है तो इल्म की राह में सबसे पहले रुकावट जो है वो तो मासियत आपने आप इमाम शाफी रहमतुल्लाह जी की तरफ मंसूब है दो अशआर शक्का व तुहिला वकी सुअली की और सानी ला करके मासी पैदा ले मंगुरु भी नाही व नूर लाए लाए होता इमाम शाफी फरमाते हैं कि मैंने अपने उस्ताद वकी से फरियाद की मेरा हाफिजा में जरा कमजोरी है आपने फरमाया कि देखो भाई ये जो है ना अल्लाह का एक नूर है और वो गुनहगार को नहीं किया जाता इसलिए और सानी रातर की मासी उन्होंने मुझे गुनाहों को छोड़ने की ताकीद फरमाई कि मासियत से अपने आप को बचाओ हालांकि वहाँ वो मासियत है जो हमारे यहाँ होती है उसका कोई तस्वीर भी नहीं है जमाने के फिर भी तक अब ये अशात हम याद कर लेते हैं और खाली उसको फिट करते कहा सूर्य मिल सके हालांकि यहाँ जो दलील पेश की गई वो दलील तो आम दलील क्या है वही नली मूर मिला है नूर लाए लाए और इल्म अल्लाह का एक नूर है और मासियत करने वाले को ये दुख दिया नहीं जाता ये खाली हफ्ते का मसला नहीं है कोई भी गुनाह जब भी कोई करेगा तो कहा इल्म नहीं आए तो दलील इस मुंह की तरफ कभी हम जाए भी नहीं अपने आप को गुनाहों से बचाने का खास इंतजाम करने की जरूरत है और देखो बच्चों आप तो यहाँ इल्म हासिल करने के लिए आए ये इल्म का बका जो है ना अल्लाह तआला ये पूरे तबका के देते थे हमने अपने असातिज़ा से पढ़ा हमारे असातिजा से हमने हासिल किया हमसे आप हासिल करेंगे आपसे आपके शागिर्द हासिल करेंगे एक सिलसिला है आप अगर किसी गफलत का शिकार हुए और उसकी वजह से आप इल्म से महरूम हुए ये एक फर्द का नुकसान नहीं है याद रखना अल्लाह ताला ने अपने दीन का इल्म हासिल करने के लिए बाकायदा चुनकर इंतखाब फरमा कर अपने अपने घरों खानदानों बस्तियों से आपको यहाँ पर पहुंचाया ताकि आप अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करें आपका असातिज़ा का तबका आपके सामने मौजूद है उन्होंने अपने असातिज़ा से इल्म हासिल किया आप अगर इस तरह गुनाहों में मुलव्वस रहेंगे तो नतीजा यह होगा कि ये इल्म आपके पास नहीं आएगा और ये सिर्फ आपका नुकसान नहीं, पूरा बीज का एक तबका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये आगे वाले तबके तक पहुंचेगा, ये आपका एक फर्द का नुकसान नहीं है, पूरे जमीन का शिकार। आप इन गुनाहों में मशगूल होकर, इन गलत हरकतों का शिकार होकर अपना तनहा ताकि नुकसान नहीं कर रहे हैं, पूरे दीन को खत्म और बर्बाद कर रहे। याद रखें आपको यहाँ पहुंचने जाए आपकी जिम्मेदारी, आपको चाहिए कि अपने अंदर इल्म आने के लिए जो जो चीजें हैं उसका पूरा इंतजाम करें, गुनाहों से बचने का इंतजाम करें। मासियत, अब यहाँ मासियत क्या शब्द है, दूसरा दूसरा आसमान है जो है ना, वो लाया तालबे में लाया चीजों में मुश्किल हो जाए तो ये भी चीज उसके लिए इल्म से रुकावट का सबब बनती है। आजकल तो आप मोबाइल का मसला चला है, मोबाइल के अंदर किसी गुनाह का इर्तिकाब न भी हो तो भी आपके हाथों में यह लाया नहीं है, ये चीज के मोबाइल आपके लिए वो अपने आप को अपने खानदान से अपने घर से बिल्कुल काट लेते जब तक इल्म के उसूल का ये मकसद पूरा ना हो जाए, मुकम्मल ना हो जाए वहां तक वो अपने घर से कोई ताल्लुक नहीं। अब यहाँ आप कहते हैं इसकी इमरजेंसी, इमरजेंसी कौन सी इमरजेंसी, आपकी कोई इमरजेंसी तारीफी में मेरे लिए इमरजेंसी यही है कि वो अपने उसूल इल्म के अंदर मशहूर है, ये मोबाइल का जो इस्तेमाल और मोबाइल ने इस वक्त जो खराबियां पैदा कर दी, मोबाइल खाली कोई आप बात करने के लिए इस्तेमाल करते, मोबाइल पर पकड़े गए, पकड़े गए मोबाइलों का जो जायजा लिया गया क्या चीजें अंदर से निकली मैं बताऊंगा। देखिए उनके अंदर उन मोबाइलों के अंदर फिल्में थी, गाने थे, क्रिकेट के बाकायदा वीडियो थे, नामानव की तस्वीरें थी, पूरे जायजा वीडियो थी, उनके दादी फोटो थे, नहर और दरिया में नहाने की तस्वीरें थी, सबक के द्वारा ली गई तस्वीरें, असातिज़ा तक को भी नहीं छोड़ा। मैं तो ये जो दर्शों की दावत देते हैं उनसे बड़े जलसे जो होते हैं बड़े इदारों में, भाई पसंद अल्लाह बोर्ड का है आम जलसा या जमीयत का जलसा या इसी तरीके से दिखाए गए बैठे अंग्रेजी का जो सेमिनार होता है उसके बाद एक आम जलसा, मैं इन सब जलसों में बाजिर कर देता हूँ। क्यों, मैं ये कहता हूँ मैं वहाँ वीडियो है मुझे तो तस्वीर से बहुत वश है, मैं किसी हाल में नहीं चाहता कि कोई मेरी तस्वीर खींचे। अब मेरा जब ये मिजाज है मेरी ना खबरी में बेखबरी में लाइवी में किसी ने मेरी तस्वीर खींची तो क्या मैं उसको माफ करूंगा, कल को क्या अल्लाह के उसको रुकता था अल्लाह इसको खूब सजा, इसने एक गुनाह में मुझे भी मुलव्वस किया, मेरी लाइन भी किया। तो ये हरकतें जो की जाती है, मैं एक आदमी अपने आप को जो बचाने का इस्तेमाल कर रहा है आप उसको मुलव्वस कर रहे हैं कि नसीब कर रहे और ये सारी चीजें ये क्या तालीम को निशान है जो बताई गई औरतों की तस्वीर, किसी अजनबी औरत को देखना शहवत की निगाह से ये कबीरा गुनाह है, बंदगी। कुरान में बारी ताला ने साफ तौर पर फरमाया कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अबसारिहिम व याखुज़ु फुरूजहुम, जिस तरह किसी जिंदा औरत को देखना ये बंदगी है, किसी औरत की अजनबी औरत की तस्वीर को देखना ये भी बंदगी है। और खाली तस्वीर नहीं, अंदर क्या क्या होता है, ये जो ये ब्लू फिल्म है, अल्लाह इन ऐसे लोगों को माफ न करे جو مدرسوں میں یہ چیز لا رہے ہیں اللہ ان کو نیٹ دے, میں یہ کہوں گا. اس لیے کہ یہ مدرسوں کو برباد کر رہے ہیں. یہ بلو فلموں کا حال تو یہ ہے کہ حکومت تک نے قانون بنایا کہ ایسی فلمیں جو ہیں ان میں جب وہ فلمیں وہ کسی تھیٹر کے ذریعے سے دکھلائی جاتی ہیں تو وہاں قانون ہے کہ کسی نابالغ کو ناپختہ عمر والے کو اس میں دیکھنے کے لیے اجازت نہ دی جائے, ٹکٹ نہ دیا جائے, باقاعدہ قانون نہیں. اور یہاں ہمارے چھوٹے بچوں کے سامنے اس طرح کی فلمیں لا کر کے بتلا کیوں کہ فلمیں بتلانے والا اپنے ناجائز اور چاہے یہ غلط شیطانی نفسانی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ فلم بتا کر اس کے جذبات کو بھڑکایا جائے اور اس کے ان جذبات سے غلط فائدہ اٹھا کر کے اپنا مقصد حاصل کیا جائے. ایسا کر کے تم اپنا مقصد ہی نہیں مدرسے کو برباد کر رہے ہو, مدرسے میں آگ لگا رہے ہو, شہوت کی آگ. شہوت کو باقاعدہ آگ کے ساتھ ہی تشبیہ دی گئی ہے. یہ جو ہو رہا ہے اتنا خطرناک ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, نہ پڑھنے میں جانے نہ نماز میں جانے. آپ کا باقاعدہ آ کے جو ہے بتا دیں نماز میں جی نہیں لگتا, پڑھنے میں جی نہیں لگتا, بھائی گناہوں کے بعد کیسے جی لگے گا. بدنگاہی کا ویسے بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بدنگاہی کا ایک نقصان یہ ہے کہ طاعت کا نور سرد ہو جاتا ہے. طلب علمی کی وجہ سے فلم کا جو نور آ سکتا ہے بدنگاہی سے تو بدنگاہی نہیں, بہت خود آگے نکل گئے ہیں آپ. بدنگاہی نہیں, یہ تو جو نقلی فلمیں دیکھی جاتی ہیں شوق سے دکھلائی جاتی ہیں, یہ کیا ہوا, پورے اس ماحول کو خراب کیا جاتا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بڑے سب کا گہرا کیا ہے وہی فرمائی بڑے نور میں, ذرا یاد کر لیجیے آپ کیا فرماتے بھائی تعالیٰ. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. جو لوگ یہ چاہتے ہیں, یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان میں یہ بےحیائی ایسے کیا ہوں, ان کے لیے بھائی تارا کیا فرماتے ہیں, عذاب علیم دنیا والا. قرآن کی وعید ہے یاد رکھنا, ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور اسلام نے ایک پاکیزہ معاشرہ قائم کیا, اسی طرح کی تفصیل ہے. ہمارے قرآن کا مطالعہ کرو, شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اسلام نے انسداد فواہش کا ایک انتظام ہے, پورا جو ہے پورا ایک پروگرام بنایا. اور آگے اسی آیت کے بعد اس ایک آیت کو چھوڑ کر یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان شیطانی نظام ہے. جو طلبا اپنے موبائل کو اس طرح استعمال کرتے ہیں, دوسروں کے پر اس طرح کی جو اس کی چیزیں بیچتے ہیں, یہ سب شیطان کی نظام کا ایک حصہ ہے. اور اس پر اتنی سخت وعید ہے, لہم عذاب الیم کی دنیا بنا کر اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف نہیں کرتے. حالانکہ قرآن میں جس واقعے کے ضمن میں یہ آیت بتائی گئی ہے وہاں تو خالی ایک تہمت کا واقعہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس تہمت کے واقعے کو بھی پھیلایا گیا, لوگ اس کا چرچا کرتے, اس چرچے سے روکا گیا. لکھا ہے کہ کہیں کسی جگہ پر زنا کا کوئی واقعہ پیش آیا, شریعت اس زنا کی سزا کا تو حکم دیتی ہے, لیکن اس زنا والے واقعے کا چرچا کرنا, چرچا اس کی وجہ لکھیے مفسرین اور علماء نے, کہ اس کے چرچے کے نتیجے میں دوسرے لوگوں کو اس طرح کا زنا کرنے کی کیا پیدا ہوگی, دل میں تقاضا پہ خالی واقعہ اس کو بیان کر، یہاں تو واقعہ کا ہے، یہاں تو یہ سب بنا دی ننگے بلا بنا دی خطرناک بنا دی، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے. یاد رکھنا یہ شہوان شہوتیں یا جو پوری کی آگ ہے، آپ لوگ آگ سے کھیل رہے ہیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں دنیا ہی میں اس کی سزا اتنی بڑھتی ہے. عذاب اللہ نے ان پر اتنا فرماتے ہیں، قرآن میں فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں جو جنسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ جنسی بیماریاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ ایسے لوگوں کی زندگی کے آخری دور کو جو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کرتے ہیں لڑ روتے ہیں کیا ہوا اس کا، اور وہ کسی کے سامنے اپنی بیٹی بیان نہیں کر سکتا. آخرت کا معاملہ تو بات کیا ہے، دنیا ہی میں ایسی بیماریاں اس کے اوپر اللہ کی طرف سے گزرتی ہیں. جو جنسی چیزیں جنسی بیماریاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، آدمی کے تو چین سے رہنے نہیں دے. یہ ایڈز جو ہے وہ بتا رہی اللہ تعالیٰ نے اس عمر کے آخری دور میں مسلط کیا ہے، اسی جنسی ناراضگی کے نتیجے. تو یہ عام اللہ سے ہم پوری دل سوزی کے ساتھ درخواست کر سکتے ہیں، اللہ اپنے اوپر رہو لا تظلموا انفسکم، ہم یہ کہیں لا تظلموا انفسکم، اپنی جانوں کے اوپر ظلم مت کرو. ہم لوگ آپ کو بچانا چاہتے ہیں، یہ تو جو حدیث میں آتا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال باب الاحتسام بل کرتے ابھی کتاب والسنہ میں مشکات میں آپ نے روایت پڑھی، مجھے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تم کو جہنم میں جانے سے بچانا چاہتا ہوں، اور تم گھس کر آگے بڑھ کر پوچھنا چاہتے ہیں. آج یہ مثال پیش ہے، ہم لوگ کے منتظمین یا آپ کے اساتذہ یا آپ کے مربی آپ کو اس آگ کے اندر پڑھنے سے روکنا چاہتے ہیں، پکڑ پکڑ کر کھینچنا چاہتے ہیں، اور آپ نے یہ چھڑا چھڑا کر کے اندر گرنے کی بات کرتے ہیں. اپنی جانوں پر رحم کرو، اللہ واسطے رحم کرو. بڑا خطرناک کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے، یہ کوئی قانون کی بھی ضرورت نہیں، آپ خود طے کر لیجیے. جب تک ہم مدرسے میں ہیں اس کو موبائل کو ہاتھ نہیں لگائیں، بولو انشاءاللہ کبھی اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے. یہ موبائل جو ہے نا وہ آپ کی جانوں سے کھیل رہا ہے، آپ کے ایمان سے کھیل رہا ہے، آپ کے اخلاق سے کھیل رہا ہے، اور آپ کو برباد کر رہا ہے. یہ خالی دو منٹ کی یا ایک گھنٹے کی کوئی جو ہے نا کوئی دل لگی نہیں ہے، یہ دل لگی نہیں ہے، یاد رکھیں. یہ تو آپ کے جسم کو بھی برباد کرتا ہے، آپ کی روح کو بھی برباد کر رہا ہے، آپ کے علمی اس کو بھی ختم کر رہا ہے، لہجے کو بھی ختم کر رہا ہے. اس لیے اس کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ جو اندر سے تفصیلات میں نے پڑھی میں تو لرز گیا کہ یہاں کے طالب علم بھی ان چیزوں میں مشغول ہیں، اور پھر یہ موبائل جب لیے جاتے ہیں تو اس پر ناراضگی ناراضگی. ارے آپ کو خوش ہونا کہ ہم تو اپنی غفلت نادانی اور شیطانی جو ہے بہکاوے میں آ کر اس کے شکار تھے. اللہ آپ کو بتائے خیر دے، آپ نے ہماری آنکھیں کھولی، آپ کو تو اس پر خوش ہونا چاہیے. آپ پر جو محنت کر رہے ہیں ارگز ارگز آپ کے دشمن نہیں ہے، یاد رکھنا. یہ آپ کے خیر خواہ ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. ان کے متعلق کوئی دوسری بات سوچنے والے وہ جو ہے نا وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے عاقبت کو، اپنی دنیا کو، اپنے وہ جسمانی نمو کو بھی برباد کر رہے ہیں. ضرورت ہے اس کی درخواست توجہ کی جائے اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کا اہتمام کیا جائے. کوئی سب آدھا برباد کہ ہم بولو میں بولتا ہوں، ہم آدھا کرتے ہیں آئندہ کبھی اس موبائل کو استعمال نہیں کریں. اے اللہ اس آدھا پر قائم رہنے کی ہم کو توفیق عطا کرو، اس کا اہتمام کرو. آپ کی اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دل سے پوچھو. میں نے ابھی جیسا کہا نہیں کہ ہم نے تو بڑی امیدیں قائم کی ہیں آپ سے، हम ऐसा नहीं कि नौज बिल्ला की आप आपके दुश्मन है, आप तो हमारा नेकी हम अपनी खेती को बर्बाद होता हुआ नहीं देखते, हमारी यादों की नींद उड़ जाती है अल्लाह, ये हमारी मेहनत सकारत आ रही है, कुछ नहीं हो रहा, हम तौबा करते हैं अल्लाह से, अल्लाह से माफी मांगते हैं, अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ कर, हमारी बदामाइयों की वजह से इन बच्चों को मालूम न करना, ये दुआ करते हैं, हम आपसे उम्मीद कायम कर रहे हैं और आप हमारी उम्मीदों पर पाई नहीं रहे, आपके सारे असाध्य बैठे हुए हैं उनके दिलों से पूछो वो क्या ये मैं इनकी तर्जमानी कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उससे इनको भी उससे इख्तिलाफ नहीं बल्कि इससे बढ़कर इसकी तारीफ करेंगे, ये आप हजरात तय कर लें आइंदा इस चीज को हाथ भी नहीं लगा और इस माहौल मदरसे का माहौल बनने बढ़ा या छुट्टी के बाद वहां दावे खामा के अंदर घंटा दो दो घंटा बैठ कर बातें ही मजलिस हैं, हर कदीम जमाने से मैं कहता चला आ रहा हूँ कि ये मजलिसें जो है ना सारी खराबियों की मदरसे में जितनी अखलाक की खराबियां वजूद में आती हैं उन तमाम की जड़ ये मजलिसें सलातों को बैठ होती है उसी में सारे फैसले, तो कुरान ने भी तो कह दिया है क्या है इन मजालिस से अपने आप को दूर रखो, अपने अखलाक को अपने मुस्तकबिल को आप अगर ठीक रखना चाहते हैं तो कभी भी ऐसी चीजों में मत बैठो, दूसरा समय तो खुलकर साफ तौर पर रात को ईशा की नमाज के बाद जो है ना वो किस्सा गोई से बातचीत करने से मना किया, सिर्फ इल्मी बातचीत दीनी बातचीत उसकी वजह से भी थाक व्यक्ति के देते हैं, लेकिन अब उसके नाम पर इस तरह ये गलत नहीं कि हम अपना है तो उससे तो नबी करीम सलासम के आगाम की भी खुल्ला खुल्ली खिलाफवर्ती होती है, रातों को ये देख कर जो जागते हैं और बैठकर मजलिस पढ़ने के लिए अपने मुताले में जाके बहुत अच्छा सलाह होकर हमारे लिए खुशी की चीज है, लेकिन इस तरह मजलिसबाजी जो आपके अखलाक को खराब करने वाली है इससे अपने आप को दूर रखें, और देखो तमाम असातिज़ा की का एहतराम उनका अदब आपके दिल में, ये नहीं कि मैं बुखारी पढ़ा रहा हूँ तो मेरा आप एहतराम करेंगे और ये जो है वलिया फांसी की किताब पढ़ा रहे हैं मामू हमारे क्या हम क्या आप अदब है, नहीं या साथीदार की पूरी जमात एक वहदत एक इकाई है एक यूनिट है, उनमें से हर फर्द का अदब और एहतराम आपके वाजिब है, किसी एक के भी अदब और एहतराम में अगर आप कोताही करेंगे ये आपके लिए ईद मसीह मखदूमी का जरिया है, जैसे हम हमारे नबी जो हैं वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हुजूर की उम्मत, लेकिन हमको शरीयत ने मुकल्लम किया अल्लाह ने तमाम नबियों पर ईमान लाने सबकी तस्दीक करने का, किसी की भी शान में अगर कोई जो है मुसलमान कोई उम्मत मोहम्मदिया का कोई फर्ज किसी भी नबी की शान में दलाली गुस्ताखी करेगा ईमान से मालूम, आप इन असातिज़ा में से किसी के साथ भी बेअदबी का मामला करेंगे तो पूरा मैंने कहा ना पूरी एक इकाई है पूरी एक वहदत है पूरा एक यूनिट है वो उस कम जो है ना उसकी बेअदबी करने की वजह से एक मसीह मरूमी का जरिया बनता है, जब तक कि आप अपना मिजाज ऐसा नहीं बनाएंगे कि हम सब ये याद है पढ़ने के जमाने में हमारे यहाँ मैं नांदेड़ पढ़ता था अशोकिया में उस वक्त तो ऐसा माहौल था कि असातिज़ा तो असातिज़ा बड़े जो तलबा थे अपनी क्लास में या ऊपर की जमात की उनके साथ भी नीचे वाले ऐसा मामला करते थे जैसा अपने उस्ताद के साथ अदब और एहतराम का, अदब जो है ना यही असल है उसी से इल्म आएगा, इब्ने वहाब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के खास शागिर्द हैं वो फरमाते हैं कि मैं मुझे इमाम मालिक के खिदमत के अंदर गए, अदब से जो फायदा पहुंचा है खिदमत से भी इतना फायदा नहीं पहुंचा। अदब ही असल चीज है, इसलिए अदब का इस्तेमाल करो और अदब ही के नतीजे में अल्लाह ताला आपको इस मस्जिद नवा देंगे। बारह कहने की चीजें तो बहुत है, मैं भी उम्र के जिस मंजिल में हूँ मुझे याद भी नहीं रहता कि कई हजरात के इस्लाम की वजह से मेरा दीनी तकाजा तो ये था कि आपके असातिज़ा का भी जो बैठे हुए हैं उनमें से कोई जरा अच्छे और ज्यादा बेहतर अंदाज में आपके सामने बात पेश करता, लेकिन इनके इसरार के नतीजे में मैं बैठा हूँ। लेकिन जो बातें मैंने कही हैं याद रखिए कि सबके लिए की आवाज़ है और सबकी नुमाइंदगी कर रही है ये, और मैंने सबकी तरफ से वह आप वकील बन करके ये बातें आपसे की हैं, आप इसका इस्तेमाल करें। खतर रह जाए अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफीक अता फरमाए। आप करेंगे अमल करेंगे ना इसको, आप जो पढ़ेंगे ना उससे तो हमारा जी खुश होगा। आप 1 करोड़ रुपया भी ला करके दें उससे हमारा जी नहीं खुश होगा। आपको पढ़ता हुआ देख कर हमारे जी में जैसी मसलत की लहर दौड़ जाती है, आपको बड़े से बड़ा हथियार बड़ी से बड़ी रकम ला करके दें उससे भी हमको वो खुशी याद है। ये अपने शागिर्दों को हर उसका जैसे बाप लखपति है, बाप ये नहीं सोचता कि मैं लखपति हूँ तो मेरा बेटा लखपति न बने, बल्कि वो तो यूँ सोचता है कि मैं लखपति हूँ मेरा बेटा करोड़ों की बन जाए। हम भी यूँ चाहते हैं कि अल्लाह हमसे दीन का काम तो ले रहे हैं, आपसे उससे ज्यादा ले, आप हमसे बढ़ करके इल्मी मैदान में काम करें, रूहानी मैदान के अंदर काम करें आप हमसे ज्यादा, ताकि आपके काम में हमारा भी हिस्सा होगा, आपका वजूद हमारे लिए सबसे जारिया होगा। बारात हमारी तमन्नाओं पर आप पानी न फेरे, हमको मायूसी का शिकार न होने दे, अल्लाह ताला आपको जदाए खैर दे, और इस जो आपने अज़्म किया है वादा किया है उस वादा पर अल्लाह ताला आपको बाकी रखे। वाखिर दावाना
ربنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وأهلا لأعدائك. نحب بحبك من احبك ونعاني بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجبلنا بالعافية. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وعلى محمد وآله وصحبه.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔